ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। औसत तिथि से 15 दिन पहले नेपाल आ चुका मानसून एक हफ्ता निष्क्रिय रहेगा, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा जानकारी। मध्य प्रदेश के 64 निर्वाचन क्षेत्रों में बनने वाली 320 किलोमीटर सड़क का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया शिलान्यास। और गजा में राहत वितरण के स्थान पर जमा हुए लोगों पर हुए हमले में कम से कम 31 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। औसत तिथि से 15 दिन पहले नेपाल प्रवेश कर चुका मानसून एक हफ्ते तक निष्क्रिय रहेगा, ये जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग की मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी है। बीते गुरुवार की रात नेपाल के पूर्वी हिस्से से प्रविष्ट होकर कोशी प्रदेश के अधिकांश भूभाग पर फैले मानसून के एक हफ्ते तक निष्क्रिय रहने के कारण बारिश कम होगी और गर्मी बढ़ सकती है, ये बात महाशाखा के मौसमविद हरि प्रसाद दाहाल ने बताई। बता दें कि नेपाल में मानसून प्रवेश करने की औसत तिथि 13 जून यानी जेठ 30 गते है, लेकिन इस बार मई 29 यानी जेठ 15 गते को ही मानसून नेपाल आ पहुंचा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में संघीयता आने के बाद जनता की विकास की इच्छा पूरी होने लगी है। आज जनकपुर में मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क कार्यक्रम अंतर्गत बनने वाली पक्की सड़कों का एक साथ डिजिटल माध्यम से शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश अंतर्गत 8 जिलों के 64 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में 5-5 किलोमीटर के हिसाब से 320 किलोमीटर पक्की सड़क बनाने के लिए शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की गति को और बढ़ाने के लिए तीनों तहों की सरकारों के बीच अधिकतम समन्वय और सहकार्य की जरूरत है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सुनकोशी मरीन डायवर्जन का निर्माण समय पर पूरा न हो पाने में ठेकेदार जिम्मेदार है, इसलिए अब उससे समझौता तोड़कर निर्माण व्यवसायी को ठेका देने के पक्ष में सरकार है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सुनकोशी मरीन डायवर्जन परियोजना अब जल्द ही आगे बढ़ेगी। आज ललितपुर के जावला खेल में मच्छेन्द्र नाथ का फोटो दिखाने के साथ फोटो यात्रा मनाई गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्टेल ने वहां पहुंचकर फोटो यात्रा में सहभागी हुए। हर साल राष्ट्र प्रमुख की उपस्थिति में मच्छेन्द्र नाथ के रथ पर खड़े होकर गुठी संस्थान के कर्मचारी द्वारा फोटो दिखाए जाने की परंपरा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित होता है। फोटो यात्रा अवलोकन के लिए उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज खिमिरे, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल लगात विशिष्ट व्यक्तित्व सहभागी हुए। बता दें कि 1600 साल पहले शुरू हुई मच्छेन्द्रनाथ की रथयात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल चौथी तक चलती है। राज संस्था समर्थकों द्वारा काठमांडू के नारायण चौर में किए गए प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा सहित 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। निषेधित क्षेत्र तोड़ने की कोशिश करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये बात प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एसपी अपील राज बोहरा ने बताई। राज संस्था समर्थक राप्रपा नेपाल लगायत कुछ दिनों से काठमांडू में प्रदर्शन करते आ रहे हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। तनहू जिला मुख्यालय में स्थित प्रदेश अस्पताल दमोली को 50 शैया में स्तरोन्नत करने का गंडकी सरकार ने निर्णय किया है। बहरहाल दमोली अस्पताल महज 15 शैया के साथ संचालित है, जिसे स्तरोन्नत करने के लिए सरकार के निर्णय के मुताबिक अब यहां की दरबंदियां भी बढ़ेंगी, ये बात अस्पताल प्रमुख डॉ परिवर्तन बराल ने बताई। उन्होंने यह भी बताया कि 15 शैया की स्वीकृति में संचालित अस्पताल में बहरहाल 24 शैया की सेवा दी जा रही है। बता दें कि ये अस्पताल इमरजेंसी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, लेबोरेटरी, दंत और नेत्र सेवा के साथ ही मानसिक उपचार और डायलिसिस सेवा भी दे रहा है। वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक गणेश रसिक का आज निधन हो गया। हाथीबन स्थित नेपाल कैंसर अस्पताल में आज उनका निधन हुआ। ये जानकारी उनके पारिवारिक स्रोत ने दी। रसिक की एकमात्र बेटी के ब्रिटेन से लौटने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा पट्टी पर हुए एक बड़े हमले में 31 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हमला गजा में चल रहे सहायता वितरण केंद्र के पास हुआ। इस घटना में 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। गजा पर इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया जा रहा है, हालांकि किसी ने भी इस हमले की अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में गजा में हालात और खराब हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में हुए हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने एक ड्रोन हमले में रूस के 40 से अधिक बमवर्षक विमानों को निशाना बनाया है। इसे रूस की वायुसेना पर अब तक सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SBU ने एक बयान जारी कर कहा है कि रूस में दुश्मन के रणनीतिक तौर पर अहम बहुत से बमवर्षक विमान आग में जल रहे हैं। इस बयान के अनुसार यूक्रेन बड़े पैमाने पर एक विशेष अभियान को अंजाम दे रहा है, जिसका उद्देश्य दुश्मन के बमवर्षक विमानों को निशाना बनाना है। बयान के मुताबिक उसने 40 से अधिक विमानों को निशाना बनाया है। SBU ने एक नाटकीय वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उसने साइबेरिया में इरकुत्स्क में मौजूद रूस के बेलाया सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। खबरों के अनुसार मारमांस्क के ओलिन्या सैन्य अड्डे पर भी हमला हुआ है। इरकुत्स के गवर्नर इगोर कोवेज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें इरकुत्स इलाके के श्रेडली गांव में एक सैन्य इकाई से धुआं उठता देखा जा सकता है। कोवेज का कहना है कि साइबेरिया में ये इस तरह का पहला हमला है। रूसी मीडिया में आ रहे खबरों में मरमांस्क और इरकुत्स्क में हुए हमले की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि रूसी एयर डिफेंस काम कर रहा है। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने बीती रात अब तक के अपने सबसे बड़े ड्रोन हमले में यूक्रेन पर 472 ड्रोन, 7 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने 385 हवाई टारगेट को नाकाम किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। औसत तिथि से 15 दिन पहले नेपाल आ चुका मानसून एक हफ्ता निष्क्रिय रहेगा, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा जानकारी। मध्य प्रदेश के 64 निर्वाचन क्षेत्रों में बनने वाली 320 किलोमीटर सड़क का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया शिलान्यास। और गजा में राहत वितरण के स्थान पर जमा हुए लोगों पर हुए हमले में कम से कम 31 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।